Today is between Master and Disciples from Hinduism's sacred text, Devi Bhagavatam, 4th book, chapter 5 to 7 will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Olexis or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai.
हिंदुत्व को पृथ्वी पर के सबसे पुराने जीवंत धर्मों में से एक माना जाता है, जिसका मूल भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यता से जोड़ा जाता है। प्रारंभिक आध्यात्मिक हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 900 ईस्वी पूर्व में संकलित हुआ। अन्य पवित्र हिंदू ग्रंथों में वेद, उपनिषद, भागवत गीता और रामायण शामिल है। अपनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों के साथ हिंदुत्व एक विस्तृत, वैविध्य और रंगीन धर्म है। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कारण और प्रभाव, कर्म का नियम, एक अकेला स्वर्गीय जीव जिसके बहुत से अवतार हैं और जिसकी सभी जीवों के लिए जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति की इच्छा है। हिंदुत्व के पोषित मूल्यों में से एक मूल्य अहिंसा या हिंसा का निषेध है। हिंदुत्व के अनुसार धार्मिक मान्यताएं और अभ्यास दैनिक जीवन के अभिन्न होते हैं। इसका एक उदाहरण है कैसे अहिंसा को शाकाहार द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो सभी जीवों के प्रति करुणा प्रदर्शित करता है।
अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदुत्व के पवित्र ग्रंथ देवी भागवतम से अध्याय 5 से 7 चौथे खंड से कुछ अंश। इस अध्याय में व्यास, जो पुराणों के पंडित है, राजा जमनजय को बता रहे हैं कि ऐसा आध्यात्मिक अभ्यासी मिलना कितना कठिन है जो अहंकार, संदेह और क्रोध से मुक्त है।
व्यास ने कहा, हे सर्वोत्तम राजा, इस मुद्दे पर लंबे समय तक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि इस जगत में ऐसे लोगों को पाना बहुत दुर्लभ है जो धार्मिक हों और अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध आदि से मुक्त हों। हे राजाओं के राजन, सतयुग में भी जो स्वर्ण युग था, यह जगत चलते और रुकते हुए ईर्ष्या और क्रोध की भावनाओं से ढका था। कलयुग में तो क्या बात करें। जब देवता कपट, ईर्ष्या और क्रोध की भावना से भरे होते हैं, तो मानव और दूसरी तुच्छ रचनाओं की क्या बात करें। जब कभी कोई भक्त तपस्वी, शांत और स्थिर प्रार्थना और ध्यान में लगा होता है और किसी मंत्र का मौन उच्चारण करता है, अनश्वरों का राजा उसकी तपस्या में बाधा डालता है। यह निश्चय ही शैतानी कार्य है। अपवित्र, पवित्र और मिश्रित व्यक्ति सभी युग में विद्यमान होते हैं। जो पवित्र हैं, उनके लिए सभी युग सतयुग होता है। अपवित्र के लिए हमेशा यह कलयुग होता है और मिश्रितों के लिए यह हमेशा त्रेता और द्वापर युग होता है। आप कभी कभार ही कुछ लोगों को सच्चे धर्म का वास्तव में पालन करते पाएंगे, अन्यथा भिन्न युगों में आप सभी लोगों को उन युगों की धार्मिकता के अनुरूप पाएंगे। हे राजन, सभी स्थितियों में जहां धर्म का संरक्षण और धार्मिक मामले हेतु चिंता होती है, तो समझें कि असली इच्छा और कामना ही इसका कारण है। अगर इच्छा अशुद्ध और कुलुषित हो, धर्म भी कुलुषित हो जाता है। स्पष्टतः किसी की इच्छा में यह अशुद्धता सभी संदर्भ में उसकी बर्बादी का कारण होती है। अतः अशुद्ध इच्छाएं कभी भी पोषित और संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। धर्म नामक एक पुत्र ब्रह्मा के हृदय से पैदा हुआ। वह ब्रह्मज्ञान, सत्य के प्रति समर्पित था। और हमेशा वैदिक धर्म के अनुसार रीतियों और उत्सवों में व्यस्त रहता था। यह उच्च आत्मा वाला मुनि धर्म एक गृहस्थ था और उसने दक्ष प्रजापति की 10 पुत्रियों के साथ तदानुसार उचित रीति से विवाह किया। यह धर्म सत्य के पालन में सर्वप्रथम था। उसके क्रमशः हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्र हुए। चारों में हरि और कृष्ण हमेशा योग का अभ्यास करने के आदि थे। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर आए और बद्रिका के आश्रम में तपस्या और प्रायश्चित के कठिन धर्म की शुरुआत की। तपस्वियों में सर्वोच्च उन 2 प्राचीन मुनियों ने पार ब्रह्म के सर्वोच्च मंत्र गायत्री को गंगा के विस्तृत चौड़े तट पर जपना शुरू किया। हरि के अंश से उत्पन्न नर और नारायण नाम के ऋषियों ने उत्कृष्टता से तपस्या का अभ्यास 1000 वर्ष तक किया। अखिल ब्रह्मांड गतिज और स्थिर उनके तप की अग्नि से गर्म हो गए। इंद्र भी व्याकुल हो गए। हजारों आंखों वाले इंद्र को उत्सुकता हुई और मन ही मन इस प्रकार सोचा, अब क्या किया जाए। धर्म के ये दोनों पुत्र तप और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। अगर वे सफल हो गए, वे स्वर्ग में मेरे उत्कृष्ट आसन पर कब्जा कर सकते हैं। कैसे मैं उनकी तपस्या भंग करूं और उनको बाधित करने के लिए मैं कौन सा कदम उठाऊं? वासना, क्रोध और असीम लोभ ने इंद्र को लुभा लिया और उनकी तपस्या में बाधा डालने को इच्छित होकर ऐरावत हाथी पर सवार हुआ। शीघ्रता से गंधमंधन पर्वत पर गया और पवित्र तपोवन पहुंचने पर 2 प्राचीन ऋषियों को देखा। उनके शरीर तपस्या से ऐसे चमक रहे थे मानो वे 2 उगते सूर्य हों। क्या वे ब्रह्मा विष्णु के अवतार थे या क्या वे प्रकाश के 2 चमकते स्रोत थे? ये 2 ऋषि धर्म के पुत्र थे। वे अपनी तपस्या से क्या करेंगे? इस प्रकार सोचकर साची के स्वामी ने उनको देखकर इस प्रकार संबोधित किया, हे उच्च भाग्य वाले, हे 2 ऋषियों धर्म के पुत्र, कृपया मुझे अपना प्रयोजन बताएं। मैं यहाँ 3 उत्कृष्ट वरदान देने के लिए आया हूँ। मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे वरदान मांगे और भले ही वे देने योग्य नहीं हो तो भी मैं आपको वह दूंगा। व्यास ने कहा, ऋषि ध्यान में पूर्णतः लीन थे और बहुत दृढ़ और धीर प्रतीत होते थे, अतः उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, यद्यपि इंद्र उनके सामने खड़ा था और लगातार उनसे वरदान मांगने की विनती कर रहा था। यह देखकर नशरों के राजा ने उनको अपने लोकातीत मायावी शक्ति से भयभीत करना शुरू किया। उसने शेर, बाघ, भेड़िये और दूसरे पशुओं का निर्माण किया और दोनों ऋषियों को उससे डराना शुरू किया। इंद्र ने भी वर्षा, आंधी और अग्नि बार बार उत्पन्न की जिससे कि वे समर्पण कर दें। इंद्र द्वारा अपनी अद्भुत माया द्वारा उनको भयभीत करने के प्रयास के बावजूद दोनों मुनि नर और नारायण धर्म के दोनों पुत्र उसके नियंत्रण में नहीं आ सके और इंद्र अपने महल में लौट गया और वह बहुत निराश हुआ और उसने इस प्रकार सोचा, ये दोनों मुनि वरदान के लालच से नहीं पिघले, ना ही वे अपनी पूजा के जगह से भागे। यद्यपि आग, हवा, भेड़िये, बाघ और शेरों से डराए गए, कोई भी मैं सोचता हूँ उनकी तपस्या भंग करने में सक्षम नहीं होगा। जब भय और लालच उनके ध्यान को नहीं खींच पाया है तो वे निश्चय ही अनंत महाविद्या श्री भुवनेश्वरी प्रकृति की प्राथमिक शक्ति, सभी मायाओं की स्रोत और सभी लोगों की जननी और देवी अद्भुत सर्वोच्च प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं। माया के भगाने के लिए दूसरा कौन निपुण हो सकता है? कौन उनके ध्यान को भंग कर सकता है? वास्तव में कैसे यह माया का सेवक जो ईश्वर और असुरों द्वारा बनाया गया है उनको अधीन कर सकता है? जो अपने सारे पापों का नाश कर चुके हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता परम माया का ध्यान कर रहे हैं, वह ब्रह्म जिसके द्वारा कोई अवास्तविक ब्रह्मांड को वास्तविक अस्तित्व का सोचता है और परम आत्मा से दूर होता है, जिससे ईश्वर और असुर दोनों अपनी सभी लोकातीत शक्तियों को प्राप्त करते हैं। वे जिनके हृदय में वाक, काम और माया के मंत्र का बीज विद्यमान होता है, वे वाक विजयी, काम विजयी, माया विजयी कहलाता है। कोई भी उसके सामने खड़ा होने और उसे अधीन करने में सक्षम नहीं होता है। हे राजन, माया के जादू से बंधा इंद्र दोनों ऋषियों को प्रलोभित नहीं कर पाया, बल्कि वह दूसरे साधनों के बारे में सोचने लगा जिसके द्वारा उनकी तपस्या रोकी जा सके, और काम और वसंत को सामने आने के लिए कहा और उनको इस प्रकार संबोधित किया। हे काम, अब आप अपनी पत्नी रति और वसंत के साथ मिलें और गंधमान पर्वत पर सभी अप्सराओं के साथ और सभी रसों के साथ जाएं। वहां आप दो प्राचीन उत्कृष्ट ऋषियों नर और नारायण को बद्रिका के तपोवन में अकेले तपस्या करते पाएंगे। हे मनमत, बेहतर है आप उनसे पहले जाएं और अपने बाणों के प्रभाव से मेरा काम करें और उनके हृदय को अत्यधिक वासनामय बना दें। हे भाग्यशाली, उनको अपने बाणों के प्रभाव से मोहित करें, अपनी जादुई शक्ति से उनको उनकी तपस्या से विमुख करें। जब ब्रह्मा, मैं, महादेव, चंद्रमा और अग्नि हम सभी आपके बाणों से मोहित हैं, फिर कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों ऋषि उनके द्वारा मोहित नहीं होंगे। मैं आपकी सहायता के लिए इन सार्वजनिक स्त्रियों को भेज रहा हूँ। रंभा और दूसरी खूबसूरत दिव्य असराएं सभी आपका अनुसरण करेंगी। आप अकेले या रंभा या तिलोत्मा अकेले यह कार्य कर सकते हैं। अगर आप सभी इसमें मिल जाएं, तो इसके पूरा होने में क्या संदेह होगा। हे हितकारी, मेरे लिए यह कार्य करें, मैं आपको आपकी इच्छित वस्तुओं का दान दूंगा। हे मनमत, मैंने उनको वरदान से प्रलोभित किया, लेकिन ये दोनों तपस्वी नियंत्रित मानसिकता वाले अपने आसन से टस और मस नहीं हो सके। मेरा प्रयास अनुपयोगी हो गया। मैंने उनको सभी मायावी शक्तियों से बहुत अधिक भयभीत किया, फिर भी वे अपने गहरे विचार से पीछे नहीं हट सके। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने शरीर के संरक्षण में बहुत लापरवाह हैं। व्यास ने कहा, कामदेव ने देवों के राजा को सुनकर इस प्रकार संबोधित किया, हे इंद्र, आज मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन एक विचार यह है, अगर ये दोनों तपस्वी विष्णु, शिव या ब्रह्मा या सूर्य का ध्यान कर रहे हैं, फिर मैं उनको अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम होऊंगा, और अगर वे महाबीज मंत्र सभी मायाओं के मूल और महान काम विजयी काम के स्वामी पर ध्यान कर रहे हैं, मैं सर्वोच्च देवी के ऐसे भक्तों को वश में करने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाऊंगा। अगर इन दोनों तपस्वियों ने महाशक्ति महादेवी की शरण समर्पित रूप से ले ली है, फिर वे मेरी बाणों की दृष्टि में नहीं आ पाएंगे। इंद्र ने कहा, हे कृपामयी, अब अपने सहयोगियों के साथ जाएं, अपना कार्य करने के लिए तैयार हों, और कोई नहीं बल्कि केवल आप ही इस हितकारी कार्य को पूरा कर सकते हैं, यद्यपि यह बहुत कठिन कार्य है। व्यास ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा आदेश लेकर वे सभी वहां प्रस्थान कर गए जहां धर्म के पुत्र नर और नारायण अपनी तपस्या कर रहे थे। अध्याय 6, उरुषि की उत्पत्ति के अवसर पर। व्यास ने कहा, हे राजन, पहले वहां पर्वत पर ऋतुओं का राजा वसंत वसंत प्रकट हुआ। सभी पेड़ों में फूल लग गए और बहुत सुंदर हो गए और भौरों ने चारों ओर गुनगुनाना शुरू कर दिया। आम, बोकुल पेड़, सुंदर तिलक पेड़, हितकारी किम सुकास, साल, ताल, तमल और मधुक पेड़ अतुलनीय सुंदर लगने लगे, अपने फूलों के गहने से सजे हुए। दक्षिणी हवा धीमे धीमे बहने लगी, जो आनंददायी सुगंध और स्पर्श में रुचकर। फिर काम रति के साथ शीघ्रता से अपने हाथों में 5 बाणों के साथ बद्रिका के तपोवन में प्रविष्ट हुए। रंभा, तिलोत्मा और दूसरी प्रमुख अफसराएं सभी उस सुंदर तपोवन में गईं और पूर्ण लय के साथ सारे रागों, मुख्य स्वरों और अनुपातिक विरामों में गाना शुरू किया। दोनों महर्षि मधुर संगीत, कोयलों की कुकू और भौरों के गुंजन को सुनकर जाग गए। नर और नारायण असमय वसंत के तड़क भड़क और पेड़ों के फूलों को देखकर उत्सुक हो गए। कैसे वसंत ऋतु ऐसे असमय ऋतु में अभी आ सकती है? यह बहुत अस्वाभाविक है कि असमय चीजें हो रही हैं। यह कैसे हो रहा है? आश्चर्य के मारे नारायण ने आंखें फैलाकर नर को कहना शुरू किया। नारायण बोले, हे भ्राता, इन पेड़ों को देखो, उन पर लगे फूल बहुत उत्कृष्ट दिखते हैं। कोयल सभी ओर मधुर स्वर में गा रही है, भंवरे सभी ओर गुनगुना रहे हैं। हे ब्राह्मण, देखो यह तपोवन देवी वसंत लक्ष्मी की उपस्थिति से कितना सुंदर और उत्कृष्ट हो गया है। वसंत लक्ष्मी ने एक अद्भुत रूप धारण कर लिया है, यह असमय क्यों हुआ है? इस पर सोचें, हे देवर्षि, मैं आश्चर्य से चकित हूँ। निश्चय ही यह हमारी तपस्या के लिए बाधा है। सुनो, अप्सराएं मधुर गीत गा रही हैं, हमारी तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है ये साधन निसंदेह हमारी तपस्या को प्रदूषित करने के लिए इंद्र द्वारा अपनाए गए हैं। क्यों यह वसंत ऋतु हमारे लिए आनंद उत्पन्न कर रहा है? यह स्पष्ट है कि यह इंद्र असुरों का शत्रु हमारी तपस्या से भयभीत हो गया है और हमारी तपस्या भंग करने के लिए ऐसी बाधाओं का निर्माण कर रहा है। देखो, शीतल, सुगंधित और आनंदमयी हवाएं बह रही हैं। इंद्र के दुष्ट कार्य के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। जब ब्राह्मणों में सर्वोत्तम नारायण देव इस प्रकार संबोधित कर रहे थे, कामदेव की संपूर्ण फौज उनकी दृष्टि के आगे प्रकट हो गई और दोनों ऋषि उनको देखकर बहुत अधिक चकित हुए। उन्होंने अपने समीप कामदेव को अपने परिचारिकों के साथ देखा। 8,500 अप्सराएं और कामदेव की फौज की लंबी कतार मुनियों ने देखी और चकित हो गए।
गुरु और शिष्यों का वार्तालाप के आज के एपिसोड पर आपके साथ के लिए धन्यवाद।
कृपया अगले बुधवार को दोबारा मिले देवी भागवतम चौथे पुस्तक अध्याय 5-7 से कुछ अंश के भाग 2 के लिए। आगे आ रहा है पशु जगत, हमारा सहनिवासी ध्यान योग्य समाचारों के बाद यहाँ परम गुरु टेलीविजन पर। अलविदा और परमात्मा कृपा करें।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल्स।
Join us again next week, Wednesday, for part 2 of this excerpt of Devi Bhagavatam, 4th book, chapter 5-7. Animal World, our co-inhabitants, is up next right after noteworthy news here on Supreme Master Television. Farewell and God bless.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.